यह आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव के लिए प्राप्त नामांकनों की जांच के बाद 238 नामांकन वैध पाए गए। स्कूली छात्रों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा 10 से 28 जून के बीच ग्रीष्मकालीन शिविरों का आयोजन किया जाएगा। आज विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस मनाया जा रहा है। बच्चों में लेखन की क्षमता को विकसित करने के लिए साहित्य अकादमी 3 से 7 जून के बीच अपने दिल्ली परिसर में कार्यशाला का आयोजन करेगी। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अतहर सईद। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव के लिए प्राप्त नामांकनों की जांच के बाद केवल 238 नामांकन वैध पाए गए हैं। प्रत्याशियों के नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि कल है। इस बीच राजधानी में चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी दलों के उम्मीदवार समर्थकों के साथ अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
बीजेपी ने स्टार प्रचारकों को चुनाव मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेता और राजस्थान के खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने आज पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा के पक्ष में कल्याणपुर क्षेत्र में रोड शो किया। वहीं इसी सीट से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी कुलदीप कुमार ने भी गाजीपुर डेयरी फार्म में महिलाओं के साथ बैठक की और अपनी जीत का समर्थन मांगा। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी दक्षिणी दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार रामबीर सिंह भिधूड़ी के समर्थन में जैतपुर इलाके में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता मनोहर लाल खट्टर ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी के लिए बुराड़ी क्षेत्र में जनसभा की। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार उदित राज ने भी आज मंगलपुरी और रोहिणी क्षेत्र में जनसंपर्क किया और लोगों से जीत का आशीर्वाद लिया। चांदनी चौक सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश अग्रवाल ने त्रिनगर इलाके में एक बैठक को संबोधित किया। वहीं इस सीट से भाजपा प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल ने अशोक विहार इलाके में लोगों से मुलाकात की और उन्हें जिताने की अपील की। नई दिल्ली सीट से बीजेपी के उम्मीदवार मासूर स्वराज ने भी अपने क्षेत्र के कालकाजी सीआर पार्क और अन्य इलाकों में जनसंपर्क किया। इस सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सोमनाथ भारती ने भी नेहरू प्लेस इलाके में जनसंपर्क किया। प्रादेशिक समाचार के लिए रहीसुद्दीन रिहान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
निर्वाचन आयोग ने आज 354 पर्यवेक्षकों के साथ लोकसभा के चौथे चरण के मतदान की तैयारियों की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पर्यवेक्षकों को निष्पक्ष, स्वतंत्र और सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री कुमार ने पर्यवेक्षकों से मतदान केंद्रों पर विशेष रूप से गर्मी की स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए भी कहा। आम आदमी पार्टी ने आज कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने उन्हें कमजोर नहीं बल्कि और सशक्त बनाया है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने कहा कि उनके नेता के जेल में होने के बावजूद पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए जोर शोर से प्रचार कर रही है। पार्टी ने 10 दिनों के अंतिम प्रचार के लिए घर घर जाकर प्रचार करने और रोड शो करने सहित चुनाव की अपनी रणनीति के बारे में भी बताया। गोपाल राय ने दावा किया कि दिल्ली सरकार की नीतियों से महिला, बुजुर्ग, व्यापारी और कामगार वर्ग सहित समाज के हर वर्ग को लाभ हुआ है। हरियाणा में कल 3 निर्दलीय विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अपना समर्थन वापस लेकर विपक्षी कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दे दिया है। तीनों निर्दलीय विधायक पुंदरी से रणधीर गोलन, नीरोखेरी से धर्मपाल गोंदर और दादरी से सोमवीर सिंह सांगवान ने अपने निर्णय को लेकर हरियाणा के राज्यपाल बंदारू दत्तात्रेय को पत्र भेज दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने किसानों के हित में समर्थन वापस लिया है।
श्री गोलन ने कहा कि समर्थन वापस लेने की मुख्य वजह हरियाणा में भाजपा के कार्यकाल में बेरोजगारी और महंगाई में वृद्धि होना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कुछ विधायकों की अपनी महत्वाकांक्षाएं थी जो पूरी नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि लोग उनकी महत्वाकांक्षाओं से अवगत हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण अत्रे ने कहा कि निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने से सरकार प्रभावित नहीं होगी क्योंकि 90 सदस्य विधानसभा में इसे अभी भी 47 विधायकों का समर्थन हासिल है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
भाजपा ने आज भारतीयों पर कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा की कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री पित्रोदा ने भारत की संस्कृति और पहचान तथा देश के लोगों का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है कांग्रेस बेनकाब हो रही है। श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की पूरी विचारधारा लोगों को बांटने को लेकर है। केंद्रीय मंत्री और पार्टी के नेता राजीव चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि श्री पित्रौदा की टिप्पणी कांग्रेस की मनोदशा को दर्शाती है। इससे पहले श्री पित्रौदा ने देश के विभिन्न हिस्सों के निवासियों की तुलना चीनियों, अफ्रीकियों, अरब और गोरों से की थी। इस बीच कांग्रेस ने श्री पित्रौदा की टिप्पणी से दूरी बना ली है। कांग्रेस का कहना है कि भारत की विविधता को दर्शाने के लिए श्री पित्रौदा ने जिस तरह के उदाहरण पेश किए वो अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस इस टिप्पणी से खुद को पूरी तरह से अलग करती है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव के लिए प्राप्त नामांकनों की जांच के बाद 238 नामांकन वैध पाए गए। स्कूली छात्रों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा 10 से 28 जून के बीच ग्रीष्मकालीन शिविरों का आयोजन किया जाएगा। आज विश्व रेडक्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस मनाया जा रहा है। बच्चों में लेखन की क्षमता को विकसित करने के लिए साहित्य अकादमी 3 से 7 जून के बीच अपने दिल्ली परिसर में कार्यशाला का आयोजन करेगी। स्कूली छात्रों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा 10 से 28 जून के बीच ग्रीष्मकालीन शिविरों का आयोजन किया जाएगा। ये शिविर राजधानी के 4 क्षेत्रों पंजाबी बाग, रोशन आरा बाग, बाबा खड़क सिंह मार्ग और बाल भवन में आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में छात्रों को सड़क सुरक्षा, आत्मरक्षा, आपदा प्रबंधन, अग्नि सुरक्षा और साइबर सुरक्षा जैसे विषयों की जानकारी दी जाएगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि शिविरों का आयोजन 3 खंडों में किया जाएगा। इस दौरान छात्रों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी और विजेताओं को पुरस्कार दिए जाएंगे। इन शिविरों में कक्षा 6 या उससे ऊपर की कक्षा के छात्र भाग ले सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 15 मई से शुरू होगी और 31 मई तक चलेगी। शिविर के बारे में अधिक जानकारी के लिए छात्र फोन नंबर 011-25845629 पर संपर्क कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं। इसमें 3 श्रेणियों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मान प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल और सिविल सेवा सहित विभिन्न विषयों और गतिविधियों के क्षेत्रों में दिए जाते हैं। पुरस्कारों की घोषणा हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। पिछले महीने 22 अप्रैल को राष्ट्रपति ने 3 पद्म विभूषण, 8 पद्म भूषण और 55 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए थे। खनन मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भारतीय खनन विद्यालय धनबाद के सहयोग से राज्य खनन सूचकांक पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। ये सूचकांक खनन क्षेत्र के हितधारकों के लिए राज्य में खनन से जुड़े व्यवसाय करने के लिए आवश्यक विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए एक उपकरण के रूप में काम करेगा। इस अवसर पर खनन मंत्रालय के सचिव VL कांथा राव ने खनन क्षेत्र के विकास में राज्यों के प्रयासों को उचित रूप से रेखांकित करने पर जोर दिया। 26 राज्यों के प्रधान सचिवों, निदेशकों और अन्य अधिकारियों ने कार्यशाला में भाग लिया। रियर एडमिरल राजेश धनखड़ के नेतृत्व में भारतीय नौसेना के प्रतिनिधिमंडल ने कल इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सिंगापुर का दौरा किया। इस यात्रा का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना और भारत और सिंगापुर के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने क्षेत्र में वर्तमान समुद्री सुरक्षा की स्थिति और उभरते खतरों को कम करने के तरीकों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने समुद्री चुनौतियों से निपटने में सहयोग के दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए IFC सिंगापुर और भारतीय नौसेना के बीच विचारों के परस्पर समन्वय पर भी चर्चा की। आज विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस है। ये दिवस संरक्षण, सहायता, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सहायता पहुंचाने वाले लाखों कर्मचारी और स्वयंसेवकों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
ये दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट आंदोलन की विचारधारा और मानवीय कार्य के सम्मान में मनाया जाता है। हेनरी यूनेंट एक अग्रणी स्विस स्वयंसेवक थे जिन्होंने लगभग 160 वर्ष पहले अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट आंदोलन की शुरुआत की। ये आंदोलन 8 करोड़ लोगों का एक विश्व स्तरीय मानवीय नेटवर्क है। ये नेटवर्क आपदा, संघर्ष और स्वास्थ्य तथा सामाजिक समस्या का सामना करने वाले लोगों की सहायता करता है। पल्लवी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। बच्चों में लेखन की क्षमता को विकसित करने के लिए साहित्य अकादमी 3 से 7 जून के बीच अपने दिल्ली परिसर में कार्यशाला का आयोजन करेगी। इस कार्यशाला में बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी में रचनात्मक लेखन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साहित्य अकादमी ने बताया कि किस्सा ओ कलम बोलती कलम शीर्षक से आयोजित इस कार्यशाला का ये 5वां संस्करण है। इस कार्यशाला में 9 से 16 वर्ष की आयु के बच्चे भाग ले सकते हैं। कार्यशाला के बारे में और अधिक जानकारी साहित्य अकादमी की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। नमो भारत ट्रेन भीषण गर्मी के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र के यात्रियों को आरामदायक सफर उपलब्ध करवा रही है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर के 34 किलोमीटर लंबे खंड पर यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के अधिकारियों ने बताया है कि नमो भारत ट्रेनों में अत्याधुनिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगा है जो यात्रियों को भीषण गर्मी से बचाने में मदद कर रहा है। इसके अलावा पर्याप्त उन्नत कूलिंग क्षमता के ये सिस्टम तेज गर्मी में भी यात्रियों को वातानुकूलित वातावरण उपलब्ध करा रहे हैं। NCRTC ने बताया है कि नमो भारत रेल में अब तक 10 लाख लोग सफर कर चुके हैं। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने घोषित अपराधी सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों में एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस ने इनके पास से 7 पिस्तौल, 30 से अधिक जिंदा कारतूस और 11 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। दिल्ली पुलिस आयुक्त विशेष शाखा प्रतीक्षा गोदारा ने बताया है कि अपराधियों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया गया था। उन्होंने बताया कि दोनों गिरोह का नेटवर्क दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत 7 राज्यों में फैला हुआ है और सभी अपराधी सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रूसी सेना में लड़ाकों की भूमिका के लिए भारतीय नागरिकों की तस्करी से जुड़े एक मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। CBI ने कहा है कि उसने मानव तस्करी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है जो देश भर में भोले भाले नौजवानों को विदेशों में आकर्षक नौकरियां दिलवाने का झांसा देता था। इस मामले में CBI ने केरल और मुंबई के दो लोगों को गिरफ्तार किया है। नागर विमानन मंत्रालय ने उड़ान रद्द होने के मामले में एयर इंडिया एक्सप्रेस से रिपोर्ट मांगी है और इस मुद्दे पर तुरंत समाधान करने को कहा है। सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ने एयर इंडिया एक्सप्रेस को नागर विमानन महानिदेशालय के नियमों के अनुसार यात्रियों को सुविधा सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है। राजधानी में आज तेज धूप रहने से लोगों को काफी गर्मी महसूस हुई। आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम रहते हुए 38.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहते हुए 27.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव के लिए प्राप्त नामांकनों की जांच के बाद 238 नामांकन वैध पाए गए। स्कूली छात्रों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा 10 से 28 जून के बीच ग्रीष्मकालीन शिविरों का आयोजन किया जाएगा। आज विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस मनाया जा रहा है और बच्चों में लेखन की क्षमता को विकसित करने के लिए साहित्य अकादमी 3 से 7 जून के बीच अपने दिल्ली परिसर में कार्यशाला का आयोजन करेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।